बागीचे में अब सिर्फ शामली और आर्यन रह गए थे। हवा कुछ देर पहले से ज्यादा ठहरी हुई लग रही थी, जैसे पत्तियां भी कान लगाकर खड़ी हों। सुबह की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर टूट रही थी और उन टूटे टुकड़ों के बीच शामली फिर से अपने काम में लगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी उंगलियों की गति पहले जैसी सहज नहीं रही थी। आर्यन वहीं खड़ा था, थोड़ा पास, जितना जरूरी नहीं था उससे ज्यादा। आज, उसने धीरे से कहा, आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो शामली। शामली का हाथ पानी के मग पर रुक गया। उसने गर्दन सीधी नहीं की, बस नजर नीचे ही रखी। आर्यन, उसकी आवाज संयम में थी, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। आर्यन मुस्कुराया। वो मुस्कान हल्की थी लेकिन उसमें जिद साफ थी। जानता हूं, उसने कहा, लेकिन इतनी भी देर नहीं हो रही कि मैं यहां 2 मिनट रुककर तुमसे बात भी ना कर सकूं। शामली ने मग नीचे रख दिया। अब वो काम का बहाना भी नहीं बना सकती थी। उसने पल्लू ठीक किया, इस बार जरूरत से ज्यादा कसकर। आर्यन, प्लीज। कल रात, आर्यन ने उसकी बात काट दी, पापा बता रहे थे कि तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो। शामली ने तेजी से उसकी तरफ देखा। ये बातें उन्होंने तुमसे क्यों की? आर्यन ने कंधे उचका दिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं समझदार हूं। फिर उसने एक कदम और पास आकर कहा, आवाज धीमी लेकिन शब्द चुभते हुए, और तभी तो मैं कहता हूं शामली, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही हूं, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। शामली के भीतर कुछ कस गया। उसने इधर उधर देखा, बागीचा खाली था लेकिन हवेली की दीवारें बहुत पास लग रही थीं। आर्यन, उसने सख्त लहजे में कहा, आवाज नीची रखो। आर्यन की आंखों में चमक आ गई, वो चमक जो डराती है। डर किस बात का? उसने पूछा। समाज का? फिर लगभग तंज में बोला, जो रिश्ता इस समाज ने बनाया है, दिल उसे मानता ही नहीं। बस यहीं शामली का संयम टूटने लगा। बस करो, उसकी आवाज पहली बार कांपी, गुस्से से नहीं, दबाव से। तुम पागल मत बनो आर्यन, उसने कहा, और मुझे गुस्सा करने पर मजबूर मत करो। उसने एक कदम पीछे हटते हुए साफ शब्दों में कहा, अब सब बदल चुका है। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। सच में? शामली ने गहरी सांस ली। ये बात उसे कहनी ही थी, चाहे जितनी चुभे। मुझे समझ नहीं आता, उसने कहा, कि मैं तुम्हें और कैसे समझाऊं, मैं अब तुम्हारी माँ हूं। एक पल की चुप्पी, फिर उसने खुद को ठीक करते हुए जोड़ा, सौतेली माँ, लेकिन रिश्ता रिश्ता ही है। आर्यन की आंखों में कुछ टूटा और उसी के साथ कुछ और उभरा, गुस्सा। तो क्या? उसने तीखे स्वर में कहा, ये रिश्ता दिल से बनता है या कागज से? शामली की आंखें नम हो गईं, लेकिन आवाज अब मजबूत थी। मैं भी इंसान हूं आर्यन, उसने कहा, मुझे भी दर्द होता है। उसने हाथ जोड़कर नहीं, सीधे खड़े होकर कहा, ये सब बातें करके मुझे सताना बंद करो। आर्यन ने एक पल उसे देखा, बहुत ध्यान से, जैसे आखिरी बार किसी चीज को पहचान रहा हो। फिर उसकी आवाज बदल गई, ठंडी, कड़ी। ठीक है, उसने कहा, अब समझ आ गया। उसने बैग का स्ट्रैप कंधे पर ठीक किया। लेकिन याद रखना शामली, उसकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। जो कुछ भी है, वो यूं ही खत्म नहीं होता। वो मुड़ा, तेज कदमों से फाटक की ओर बढ़ गया। बागीचे में फिर सन्नाटा छा गया। शामली वहीं खड़ी रह गई, हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। पौधों पर गिरती धूप वही थी, हवा भी वही, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। आर्यन चला गया था और उसके साथ एक भारी सा डर बागीचे में छोड़ गया था। बागीचे से लौटकर शामली सीधे अपने कमरे में आ गई थी। कमरे की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी उसे लग रहा था जैसे हवा भीतर तक पीछा करती चली आई हो। उसने बिना किसी को देखे बिस्तर की चादर ठीक करनी शुरू की, कोने खींचे, सिलवटें सीधी की, तकियों को झटका। सब कुछ बहुत व्यवस्थित करने की कोशिश थी, जैसे बाहर का बिखराव भीतर तक ना फैल पाए। लेकिन फिर वो पल भर के लिए बिस्तर के किनारे बैठ गई, बस पल भर। और उसी पल आर्यन की बातें उसके दिमाग में लौट आईं, उसकी आंखों की वो चमक, वो जिद, वो आखिरी ठंडी चेतावनी। तुम क्यों नहीं समझते आर्यन? उसके होंठ खुद ब खुद हिले। आवाज बाहर नहीं आई, पर सवाल उसके सीने में गूंज गया। रिश्ते बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। उसने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी, उंगलियां अब भी हल्की सी कांप रही थी। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि वो समझ जाए? उसने खुद से पूछा। और अगर हवेली में किसी को जरा सी भी भनक लग गई? उसका गला सूख गया। ये हवेली बातें नहीं सहती, यहाँ इज्जत नाम की चीज बहुत भारी होती है और औरत के हिस्से में ज्यादातर बोझ वही आता है। अगर किसी ने कुछ भी गलत समझ लिया तो न सिर्फ वो बदनाम होगी बल्कि उसका पूरा परिवार भी ये दाग नहीं झेल पाएगा। वो इसी उधेड़बुन में थी कि दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। शामली चौंक गई। बहू जी? मधु की आवाज थी। शामली ने तुरंत अपने चेहरे के भाव समेटे, जैसे कोई पर्दा खींच लिया हो। आ जाओ, उसने सामान्य लहजे में कहा। मधु कमरे में आई, हाथ में कपड़े थे। उसने शामली को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दी। क्या बात है बहू जी? उसने छेड़ते हुए कहा। किसकी ख्याल में खोई थी? शामली ने नजर झुका ली। कुछ नहीं मधु, उसने जल्दी से कहा, बस थक गई हूँ। मधु ने कपड़े रखते हुए भौहें उठाई। अच्छा? फिर हल्की हंसी के साथ बोली, आप तो सोच रही होंगी कि कल रात आप कार से अपने कमरे में कैसे आई, है ना? शामली ठिठक गई।
वो बात अजीब है, लेकिन उसने अब तक सच में उस पर सोचा ही नहीं था। कल रात की याद धुंधली थी, दर्द, थकान, आंखों का बोझिल होना और फिर सीधे सुबह। मैं, उसने धीमे से कहा, मुझे याद नहीं। मधु ने सिर हिलाया, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। याद भी कैसे रहेगा, वो बोली। वैसे बड़ी ठाकुर ने आपको अपनी बाहों में उठाया था, उसने आंख मारी। आजकल के जमाने में इसे क्या कहते हैं, रोमांटिक? श्यामली के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी भर गई। यहीं एक नया मोड़ ले लिया।